हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजमहल में? नहीं नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? इस तरह से आप यहां महल से कहीं नहीं जा सकते। अगर आप चले जाएंगे तो फिर महारानी बिल्कुल अकेली हो जाएगी। पहले ही राजकुमार राजकुमारी कोई भी महल में नहीं है, और ऊपर से महारानी की ऐसी हालत। महामंत्री ने राजा के रास्ते में आकर उसे वहां से जाने से रोकते हुए कहा। राजा अपने अस्त्र शस्त्र लेकर और एकदम युद्ध वाले कपड़े पहनकर महल से निकलने के लिए तैयार हो रहा है। उसके साथ ही सैनिकों की एक टुकड़ी भी है, और वो सब एक साथ वहां से निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजमहल के कुछ विद्वान और मंत्री इस बात के पक्ष में नहीं हैं। वो लोग राजा को वहां से जाने से रोक रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने तुरंत ही पीछे मुड़कर अपने मंत्री की बात का जवाब देते हुए कहा, यहां से कहीं नहीं जाऊं तो फिर क्या करूं मैं? हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहूं क्या? मुझसे भी रानी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। लेकिन इसका सिर्फ एक ही उपाय है, रानी के सामने उनके बच्चों को सही सलामत लेकर आना। वो उन्हें देखेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं कैसे भी अपने बच्चों को ढूंढने जा रहा हूं। महाराज, इस तरह से राजमहल छोड़कर जाना भी ठीक नहीं होगा। आपके पीछे सब कुछ संभालने वाला कोई भी यहां पर नहीं है, और आप भी नहीं रहेंगे तो हमारे दुश्मन इस बात का फायदा उठा सकते हैं। और महल में भी हम नहीं जानते, हर तरह के लोग छुपे होते हैं, जिनमें से सबके मन के विचार अच्छे नहीं होते। बहुत सारे लोग अपने मन में ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं। मंत्री ने फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की, तो राजा जो अपना मुकुट लगाने वाले थे वो उतार कर उन्होंने वापस वहां थाल में रख दिया, जो कि एक सेविका पकड़कर खड़ी हुई थी। और राजा एक गहरी सांस लेते हुए बोले, तो फिर आप ही बताइए क्या करें हम? इतने सारे सैनिकों को तो हमने भेजा हुआ है, और अब तक 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी खबर नहीं आई है राजकुमार और राजकुमारी की। सब के सब किसी काम के नहीं हैं, हम किस पर विश्वास करें? इतना बोलते हुए राजा बहुत ही ज्यादा हताश होकर वहां एक कुर्सी पर बैठ गया, और उसे ऐसे हताश निराश देखकर मंत्री तुरंत ही सोच में पड़ गया। थोड़ा सा सोचते हुए उसने कहा, महात्मा गुरुजी हमेशा वही आपकी सहायता करते हैं, तो इस बार भी आपको उनकी ही शरण में जाना चाहिए। उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। मंत्री ने जैसे ही महात्मा गुरुजी का नाम लिया, राजा को भी इस बारे में याद आया, और उसने कहा, ठीक है, गुरुजी के आश्रम चलने की तैयारी करो, और जब तक हमारे सबसे विश्वासपात्र लोगों को महारानी की सुरक्षा के लिए तैयार करो, और हमारी पीठ के पीछे यहां पर ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी हम तुमको सौंपते हैं महामंत्री। राजा ने महामंत्री की तरफ देखकर आदेश देते हुए कहा, तो राजा की बात सुनकर महामंत्री ने धीरे से हां में अपना सिर हिलाया, और कुछ देर बाद ही पूरी तरह से तैयार होकर अपने सैनिकों की एक टुकड़ी और एक सेनापति के साथ राजा वहां से निकल गए। जबकि एक सेनापति और कुछ सैनिक पहले से ही वहां पर जंगल में तैनात हैं, और इधर उधर हर जगह पर चंद्रिका और वीरेश को ढूंढ रहे थे। उनमें से एक सेनापति का तो चंद्रिका और वीरेश से आमना सामना भी हुआ, लेकिन वीरेश की शक्तियों के आगे वो लोग उन दोनों को पकड़ नहीं पाए और ना ही रोक पाए। गुरुजी का आश्रम? महात्मा ने शिवानी की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाया। शिवानी, हमने अपने किसी भी शिष्य को झूठ बोलना नहीं सिखाया है, लेकिन फिर भी तुमने हमसे ये बात छुपाई इतने दिनों तक। भले ही आज खुद ही तुमने सच बताया, या फिर सक्षम ने तुमसे सच बताने को कहा, जो भी हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुमसे तुम्हारी सबसे मुख्य शक्ति मैं वापस ले लूँगा, और अगर तुम्हें ये शक्तियाँ दोबारा से चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो, और दोबारा से आश्रम का कोई भी नियम नहीं तोड़ोगी। शिवानी वहां पर उन सब लोगों के सामने सिर झुकाकर खड़ी हुई है, और वो भला क्या बोलती, क्योंकि उसे भी पता है इन सब में गलती उसी की ही है। भले ही वीरेश की गलती भी है, लेकिन अभी वो वहां पर नहीं है तो सब कुछ उसे ही कहा जाएगा। शिवानी ने चुपचाप गुरुजी की बात मान ली और सर झुकाकर वहां से चली गई। बाकी सारे शिष्य उसे इस तरह से देखकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और सभी को डर लग रहा है। शिवानी को जो सज़ा मिली, कहीं ऐसी कोई सज़ा कभी भविष्य में उन लोगों को भी ना मिले। इसलिए उन सब ने मन ही मन निश्चय किया है कि वो लोग गुरुजी से कोई भी बात नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि किसी को भी अपनी शक्तियाँ वापस करना नहीं पसंद है। हाँ हाँ, शिवानी ने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी गलती उसकी है। हाँ बेशक, इसमें वीरेश की गलती ज़्यादा है, वो तो बस अपनी दोस्ती निभा रही थी। नहीं, हम अपनी दोस्ती निभाएं या कोई भी फर्ज, लेकिन किसी भी तरह से हम आश्रम के नियमों को नहीं तोड़ सकते। ये हमें सबसे पहले सिखाया जाता है। आसपास खड़े वो सारे शिष्य आपस में बातें कर रहे हैं और शिवानी वहां से उन लोगों से दूर चली गई, क्योंकि वो सारी बातें वो अब और नहीं सुनना चाहती और शक्तियां चले जाने के बाद वो पहले से बहुत ही कमजोर महसूस कर रही है। वो एकदम अकेली जगह पर जाकर बैठ गई और तभी अपर्णा माँ उसके पास आकर बैठी और उसे समझाते हुए बोली, तुमने गलती की थी जिसकी सजा तुम्हें मिल गई, इसलिए अब इस बारे में इतना मत सोचो और अगर तुम्हें शक्तियां वापस जाएं तो आज से ही खुद को साबित करने के लिए कठिन परिश्रम करो और ध्यान भी। इतना बोलते हुए शिवानी के सिर पर अपर्णा माँ ने हाथ फेरा और सक्षम भी वहां पर मुस्कुराता हुआ उसके सामने ही खड़ा है, वो भी उसे हिम्मत दे रहा है। फिर अपर्णा माँ जब उसे समझा कर चली गई तब सक्षम उसके पास आया, तुम बहुत बहादुर हो शिवानी, कम से कम तुमने मुझे ही ये बात बता दी और मैं समझ सकता हूँ तुम्हें वीरेश की फिक्र है और मुझे भी है, लेकिन ये सोचो गुरु जी भी उसके लिए कितना परेशान थे ना। सक्षम से ये सब कुछ समझ रहा था तभी शिवानी उसके गले से लग गई और बोली, हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वीरेश को भी यहाँ से जाने से रोकना चाहिए था, या इस वक्त में तुम्हें या गुरुजी को इस बारे में बता देती तो शायद आज परिस्थितियाँ ऐसी ना होती। इतना बोलते हुए शिवानी उसके गले लगाकर रोने लगी। शिवानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वीरेश ने उसके कंधे और सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो तो हो गया, उस बारे में सोचकर रोने का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन मैंने इस बारे में सोचा है, चलो हम सब मिलकर वीरेश को ढूंढते हैं और उसे वापस आश्रम लेकर आते हैं, तब उससे हम गुरुजी की कुछ तो मदद कर पाएंगे और तुम भी खुद को साबित कर पाओगी। जारी रहेगा।